नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस जेडी चिंतामणि मेगा ओपिनियन पोल में। और आप जानते हैं कि अब चूंकि जेडी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो पहले तो हम ओपिनियन पोल हर फेस पर कर लिया करते थे, लेकिन अब हमें ओवरऑल करना पड़ रहा है। और इस ओवरऑल ओपिनियन पोल में हालांकि हम ठीक है, डिस्कशन तो हम कर ही सकते हैं, डिस्कशन करने में किसी तरह की रोक नहीं है, वो हम लगातार करते रहेंगे। तो अब हम ओपिनियन पोल डिस्कस करेंगे, साथ में हमारे पास चार मेहमान हैं। आप परिचय करा देता हूं मेहमानों से, आपके सुपरिचित हैं चारों ही, और ओंकार चौधरी जी, नागराजन सुंदरम जी, अभिषेक तिवारी जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। तो अब हम आरंभ करेंगे, सबसे पहले सीधे चलते हैं पोलिंग पे, उसी के साथ साथ जो डिस्कशंस हैं वो होते जाएंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं पूर्वी क्षेत्र से, ईस्ट से, और ईस्ट आपके सामने लाते हैं। ईस्ट में हमारे पास हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये 142 कुल सीटें हैं ईस्ट में। 142 सीटों में सामने लाए जरा ग्राफिक जी। तो ये ग्राफिक है ईस्ट का, और इसमें सारे हमने इसमें दे दिए हैं। और ईस्ट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे प्रदेश हैं, विशेषकर उत्तर पूर्व में, वो देख रहे हैं ना आप, अदर स्पेशल बिल्डिंग होता है। और बिहार में साहब आप देखते हैं 40 में से बीजेपी 16, कांग्रेस 1, एनडीए 35, जिसका अलग अलग वो दिया हुआ है, और इंडी का दे रखा है इसमें 5, जिसमें आरजेडी 2, सीपीएमएल 2 और कांग्रेस 1। झारखंड का 14 में से बीजेपी 13 और जेएमएम का 1। पश्चिम बंगाल में 42 में से बीजेपी का 22, कांग्रेस का 1, टीएमसी का 19। असम में 14 में से बीजेपी का 10 और इसमें एनडीए का जो है वो आया नहीं है शायद इसमें, क्योंकि 10 है इसमें, 2 एजीपी का है और 1 जो है वो इनका जो वो बोडो वाला है उसका है, बीपीबीएलपी या बीपीएल के नाम है उसका, और 1 एयूडीएफ का है, कांग्रेस का 0। ओडिशा में 21 में 11 और बीजेडी 10। सिक्किम में एसकेएम का ही है। नागालैंड में एनडीपीपी का है 1, वो एनडीए का ही घटक है। मणिपुर में 1 एनडीए 1 एनडी, यानी 1 बीजेपी 1 कांग्रेस। और मिजोरम में 1 है, वो जो नई पार्टी आई है ZPM, वो जीतती दिख रही है। त्रिपुरा में 2, दोनों एनडीए मतलब दोनों ही बीजेपी। और मेघालय में 2, वो एनपीपी की दोनों हैं, वो एनडीए का भाग है। अरुणाचल में 2 है, वो दोनों के दोनों बीजेपी यानी एनडीए की दोनों हैं। और ये जो टोटल बनता है जाके, ये इस प्रकार का बनता है कि 142 में से 64 बीजेपी की हैं और एनडीए की 101 है। अब इसमें शुरू करते हैं, बिहार से शुरू करेंगे तो अभिषेक जी से शुरू करना पड़ेगा जी। बिहार बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल आप बोले, इसमें क्या कह रहे हैं
जी। सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार, ओमकार सर को प्रणाम, वीरेंद्र सर को प्रणाम, नागराजन सर को प्रणाम। चिंतामणि सर का ओपिनियन पोल एक बार मुझे भी डरा रहा है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे विजिट कर रहा हूँ बिहार को लेकर के, पर मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग कुछ सीट आपने जो बिहार की बताई कि CPIML को 2 मिल रहा है, दैट मीन आपने शायद
जहानाबाद और कराकट दोनों जा रहे हैं, आपके पवन कुमार जी आ गए कराकट में, तो अब तो आप कराकट करेंगे।
और जहानाबाद लोकसभा सीट चूंकि आप दे रहे हैं तो ये दोनों सीट ठीक है। सारण सीट संभवतः आप बीजेपी को हरा रहे हैं, मुझे लग रहा है, एम आई राइट सर? चिंतामणि सर के वही अपडेट है क्या सारण सीट को लेकर के? और
हाँ, सारण सारण ठीक है, और एक चीज और मैं बताता हूँ कौन सा है। एक सीट संभवतः उधर के आपके सीमांचल की है।
हाँ, सीमांचल की अररिया वाली हो सकता है आप जिता रहे हो, लेकिन कल एक डेवलपमेंट हुआ है मधुबनी को लेकर के, तो वो हमें अपडेट रहना चाहिए कि
और किशनगंज कांग्रेस जीतेगी भाई, देखिए उसमें कोई संदेह की बात
ये अपडेट करने के लिए बहुत बहुत
नहीं।
धन्यवाद कि किशनगंज कांग्रेस जीत रही है, इसके बारे में तो कोई अतिशयोक्ति थी नहीं। लेकिन मेरा मानना है इसमें एक पोल में सिर्फ ये अंतर है कि एलजेपी अपनी 5 की 5 सीटें निकाल रही है, जहाँ तक मुझे समस्तीपुर के बारे में पता है, जमुई के बारे में पता है, हाजीपुर के बारे में पता है, और इसके अलावे एक और सीट जो है जो छूट रही है वो उसके खाते में है, जहाँ से महबूब अली कैसर चुनाव जीतते थे, वहाँ से वर्मा जी हैं, वो व्यापारी वर्ग से हैं और बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं वहाँ पे, वो भी सीट निकाल लेंगे, खगड़िया वाली सीट। लेकिन एक चीज जो जेडी पोल पे मैंने, चिंतामणि सर का जो पोल है मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, आज से 3 महीने पहले जब अलायंस चेंज हो रहा था और जेडीयू साथ में आ रही थी, तो मुझे जयपुर डायलॉग्स पे भी बहुत सारे दर्शकों ने बोला नहीं नहीं आपको पता नहीं है नीतीश कुमार जी के आने का फायदा बहुत अधिक होगा एनडीए को, तो ऑब्वियसली एनडीए के 4 5 6 सीट तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज मैं अब ये पोल देख करके एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या वास्तव में बीजेपी को फायदा हुआ? अगर बीजेपी पिछली बार 17 सीट जीती थी और इस बार 16 जीत रही है, तो क्या नीतीश जी के इस अलायंस में आने का बीजेपी को फायदा हुआ, या बीजेपी परंपरागत रूप से जो पिछला अलायंस था उसको लेकर के चलती तो फायदे में रहती? 20 21 सीट तो वैसे भी वो जीत रही थी, अपने बूते पे सिर्फ बीजेपी का नंबर था। सो इसी को लेकर के एक बात है, मुझे लगता है कि बाकी पोल ठीक है, लेकिन बंगाल को लेकर के सर 22 सीटें आपने चिंतामणि सर ने दी है, आई बिलीव कि बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एक सिर्फ कंफर्मेशन पूछना चाह रहा था कि सर शत्रुघ्न सिन्हा वाली सीट आप लोगों ने जीत दिखाई है या हार दिखाई
जीत
है
दिखाई
उसके
है।
बाद?
18 की 18 जो
सर
पिछली बार जीती थी वो सारी जीत दिखाई है। उसमें जो ऐड की है वो मैं बता देता हूँ, उसमें कांती ऐड की है, तामलुक ऐड की है, और आपके श्रीरामपुर ऐड की है,
श्रीरामपुर ऐड की, ठीक है,
श्रीरामपुर ऐड की है, और एक आरामबाग ऐड की है, ये 4 ऐड की है।
आरामबाग। मुझे लगता है कि इसमें एक
हालांकि
दो,
बीरभूम में और कृष्णानगर में भी अच्छा कांटेस्ट है।
जी, मुझे लगता है इसमें एक दो और ऐड हो सकते हैं, जैसा आपने बताया कृष्णानगर, कृष्णानगर सीट पे मेरी काफी दिनों से नजर भी है, तो वो सीट एक संभवतः निकल जाए, अदरवाइज इससे पूरी तरह सहमत हूँ। रही बात झारखंड की, इंटरेस्टिंगली झारखंड में जो आप लोगों ने पोल दिया कि बीजेपी 13, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका है जेएमएम के लिए, कि जेएमएम के एक तो नेता जेल में गए और लोकसभा चुनाव में पूरा महागठबंधन, ये नहीं भूलना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि आरजेडी का वहां पे अस्तित्व नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, झारखंड में भी आरजेडी को लेकर के यादव जो है सेंटिमेंट में वोट करते हैं, खास करके वो पूरा बांका से लेकर के वो जो इलाका लगा हुआ है बिहार का बॉर्डर एरिया, वो पूरा बॉर्डर एरिया होता है, और फिर भी वहां पर इस प्रकार के रिजल्ट हो रहे हैं। जैसे मैं गोड्डा लोकसभा की बात कर रहा हूँ जहां से निशिकांत दुबे जी आते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है कि 13 सीट झारखंड में जीत रही है, मुझे तो लग रहा था कि 11 12 तक शायद सिमट जाए। उड़ीसा में भी आपने 11 सीटें दी हैं, पिछली बार 7 थी संभवतः, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी एक प्रोग्रेस दिख रहा
हाँ,
है,
एक तो वो तो पूरी वाली जो सीट है वो
आपने वापस,
मिलेगी,
हाँ
वो बीजेपी को मिलेगी, संबित पात्रा इस बार जीत जाएंगे।
उड़ीसा में 8 सीटें आई थी बीजेपी की।
हाँ, तो 8 से
हाँ
थोड़ी बढ़त है, एक तो पूरी वाली सीट जीतेंगे।
तो अब लेकिन मैं कुछ सीटों को लेकर के बिहार के बारे में संभवतः कुछ अगर प्रश्न होगा तो मैं बताऊं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है सर, ये जितने निर्दलीय कैंडिडेट हैं उन्होंने सांसें फुला दी हैं बीजेपी की भी और आरजेडी की, फर्स्ट फेज में चार लोकसभा सीटों पे वोटिंग होनी है, जिसमें जमुई है, नवादा है, औरंगाबाद है, जमुई है, नवादा है, औरंगाबाद और गया। इनमें से तीन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नवादा को थोड़ा सा देखते हैं। आज तेजस्वी यादव को ये बोलना पड़ा कि जो बागी लोग खड़े हैं उनको लालू प्रसाद यादव जी ने कितना बचाने का, बढ़ाने का काम किया है, आज वो यादव समाज उनसे नाराज क्यों है। क्योंकि वहां के जो बाहुबली हैं, आपको तो पता होगा संजय सर, वहां पर राजभल्लव यादव के छोटे भाई खड़े हो गए निर्दलीय, और वहां पर राजभल्लव यादव का ठीक ठाक जो है प्रभाव है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये बाहरी वर्सेस भीतरी का जो मुद्दा भी था वो गौण होता जा रहा है। विवेक ठाकुर की अपनी परेशानी है, भूमिहार समाज से एक सिंगर है गुंजन सिंह, वो लोकसभा में इस बार निर्दलीय खड़े हो गए। हालांकि भूमिहार समाज में मैं नवादा गया था और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, वो समाज तैयार नहीं है उनको वोट करने को लेकर के गुंजन सिंह को। तो आज बहुत तेजस्वी यादव परेशान थे उस रैली में, उस सभा में, और उन्होंने कहा कि अगर यादव समाज धोखा, राजद की केंद्रीय कमेटी को धोखा दे रहा है उसके निर्णय को, तो ये कहां जा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी केंद्रीय कमेटी है जो मीसा भारती को टिकट दे दी दो बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी। सर तो बिहार को लेकर के जो परेशानियां हैं वो ठीक है, और चिंतामणि सर का जो ये पोल पहले,
मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी सीट हार में दिखाई है। वो जो है वो समस्तीपुर सीट हार में दिखाई है एलजेपी की,
नहीं हारेगी सर संभवी, नहीं हारेगी।
एक एलजेपी की ये दिखाई है, सारण सीट जो है वो आपकी इसकी दिखाई है,
राजीव प्रताप रूढ़ी वाली,
राजीव प्रताप रूढ़ी वाली रोहिणी आचार्य को इसमें जीत दिखाई है। और जेडीयू की जो दिखाई है दो सीटें, तो वो आप दिखाई है, एक तो जहानाबाद और दूसरी काराकट तो उपेंद्र कुशवाहा की है, तो ये थोड़ा सा अभी काराकट उसमें नहीं आई है इनकी। एक तो जहानाबाद दिखाई है हरी हुई सीट, और दूसरी एक और कौन सी दिखाई है,
किशनगंज दिखाई होगी।
हाँ किशनगंज,
किशनगंज दिखाई होगी, बिल्कुल 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 परफेक्ट पोल है। लेकिन मेरा एक
लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले का किया हुआ है, तब तक पवन कुमार का जो है वो आया नहीं था, लेकिन मुझे लगता है पवन कुमार वाली सीट जो है काराकट में भी मुश्किल हो जाएगी।
नहीं नहीं, वो काराकट सीट पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जीतने के बाद भी एज ए सांसद फिर वो मंत्री भी बने थे, काराकट मोड़ के नहीं देखा था, ऐसा नहीं है। और पार्टियों के अंदर एक इस अलायंस में प्रॉब्लम क्या हुआ है, जहां पर जदयू के लोगों को टिकट नहीं मिला वो फुल ढंग से, ये पहली बार हो रहा है कि जो ट्रांजेक्शनल वोटर्स थे, तो बीजेपी का वोट और जदयू का ट्रांजेक्शनल हर जगह वो उस तरह से नहीं दिख रहा है, कई जगह पर दिख रहा है। अब जैसे नवादा में कुशवाहा समुदाय, तो उनका लॉकुस समीकरण का वोटर है, और आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में, सम्राट चौधरी एनडीए के बड़े नेता, और वहां पर नवादा सीट पर श्रवण कुशवाहा खड़े हुए आरजेडी से, तो उसका परिणाम ये निकला कि वहां का कुशवाहा समुदाय आरजेडी की तरफ जा रहा है, और यादव माइनस हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग है कि यादव वो जो है राजबल्लभ यादव के छोटे भाई के साथ खड़ा हुआ है, इस वजह से दोनों परेशान है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये एक बेहतर ओपिनियन पोल है, वेल रिसर्च मैं कहूंगा, बिहार को लेकर के, बंगाल को लेकर के, और झारखंड को लेकर के। उड़ीसा पर मेरी नजर थोड़ी सी कम रही है, चूंकि वहां पर मैं विजिट नहीं कर पाया हूँ, बाकी इसमें।
और दर्शकों को एक बात ये भी बता दें कि हमने इस बार वोट शेयर जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया है, हमने केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी जानने का प्रयास किया है, तो ये भी एक प्रयोग है, देखते हैं ये प्रयोग कितना सफल होता है। और नॉर्थ ईस्ट पे चलते हैं और ओंकार जी से पूछते हैं, ओंकार जी नॉर्थ ईस्ट पर आपकी दृष्टि है क्या?
जी माइक बंद था। नहीं, नॉर्थ ईस्ट पर एज सच मैंने कोई डीपली अध्ययन नहीं किया है संजय जी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, मैं हवा में कोई बात नहीं करूँगा।
जी तो अब चलिए, नॉर्थ ईस्ट का मोर ऑर लेस वैसे यदि देखा जाए तो अधिकतर जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो लगभग यही बता रहे हैं, और छोटे छोटे स्टेट्स बहुत सारे हैं, ईस्ट का तो इसका मतलब ये है कि लगभग सबसे अधिक आइडिया यहाँ अभिषेक जी को ही है ईस्ट का, तो लगभग जो ये परिणाम दिखाए गए हैं वो ठीक ही हैं। तो अब चलते हैं हम सीधे साउथ के ऊपर, और साउथ के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं नागराजन जी। और नागराजन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप साउथ का भी एक मिनट, इसको ला रहे हैं हम सामने लाते हैं। ये आ गया साउथ का, मैं साउथ का पहले पढ़ देता हूँ सभी को। 132 सीटें हैं साउथ में, और आपके इसमें फिर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, एनडीए का ओवरऑल नहीं दिया, एक्चुअली कन्फ्यूजन भी है केरला की वजह से। तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, और अच्छा ये इसका एनडीए दिया हुआ है, लेकिन ये फॉन्ट जो है वो इस कलर का है कि इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तमिलनाडु की ये गड़बड़ है भाई, थोड़ा पूरा ही गड़बड़ है। बीजेपी की 5 हैं, और कांग्रेस को 5 हैं, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसकी क्या स्थिति है। ओवरऑल जो है ये इसमें बीजेपी प्लस एलाइज यानी एनडीए की इसमें 10 सीटें आई हैं, और इनकी जो है वो 30 सीटें आई हैं। पांडिचेरी अलग से है, पांडिचेरी तो अलग से है, तो उसमें इनकी 29 सीटें आई हैं। कर्नाटका में 28, तो 22-4-2 यानी 22 बीजेपी कांग्रेस 4 और 2 सीट जो है वो मिल रही हैं जेडीएस को। केरला में बीजेपी की 2 सीटें हैं, और कांग्रेस यानी यूडीएफ और एलडीएफ की 8-8 हैं। आंध्र प्रदेश में ये देख ले, ये जो सामने आ रहा है साउथ वाला आप देखें ऊपर, इसमें ये पूरा टोटल दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश बीजेपी की 3, एनडीए की 17, जिसमें टीडीपी 12 और वाईएसआरसीपी की 8 सीटें इससे बताई गई हैं। तेलंगाना 17, बीजेपी 5, कांग्रेस 8 और बीआरएस 3, एमआईएम 1। पांडिचेरी की सीट बीजेपी को, लक्षद्वीप की कांग्रेस या एनसीपी को, लक्षद्वीप की इधर उधर जाती रहती है कई बार, तो मैं पता नहीं किधर जाएगी। और अंडमान की सीट जाएगी बीजेपी को, पिछली बार कांग्रेस को गई थी। तो ओवरऑल ये है 132 में से बीजेपी 39, कांग्रेस 23, एनडीए 60 और इंडिया अलायंस 47, अदर्स इंक्लूडिंग एलडीएफ, यानी इसमें इंडिया अलायंस में एलडीएफ की सीटें नहीं डाली हैं, अदर्स इंक्लूडिंग एलडीएफ 23। नागराजन जी
आपका अनुमति है तो मैं पूर्वोत्तर और ये क्या है ईस्ट पूर्व का दोनों के ऊपर 2 टिप्पणियां कर देता हूं आपका अनुमति है तो।
जी,
एक है ये दी इंडिया अलायंस पर्टिकुलरली कांग्रेस इस इज इन अ टर्मिनल डिक्लाइन। असम में जो परिसीमन का ख्याल रखा गया है ऐसा समझता हूं मैं, क्योंकि वहां का जो कालिया भोर है और सीटें हैं उसका रूप बदल गया है।
काजीरंगा हो गया है लगभग, काजीरंगा बना दिया है उसको सीट।
हाँ जी, इसलिए वहां ये उनको जोरहाट में जाना पड़ा। कांग्रेस को डिक्लाइन हो रहा है वहां, 3 सीट था पहले पिछली बार, वो तो खत्म हो रहा है, और उसमें क्या है पूरा खत्म नहीं होगा, इसमें मेरा सहमति नहीं है। शिलांग सीट कांग्रेस हमेशा लेती है, उनका पॉकेट बरो है हिंदुस्तान
में। सत्रह मेघालय में है सर।
हाँ जी, मेघालय में 2-2 दे दिया ना अपने एनपीपी को, जो सांगमा पार्टी को दे दिया है, वो नहीं होने वाला है। शिलांग को तो वो लेंगे। दूसरा है जो बिहार के बारे में, तो हमारा बिहार एक्सपर्ट है उनको, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं करना चाह रहा हूँ।
नहीं, आप अपना मत व्यक्त करें ना, उसमें मत व्यक्त करने में कोई समस्या नहीं
है। आकलन है जो उड़ीसा में दो सीट इसके ऊपर 11 दिया है चिंतामणि जी ने, 13 होने का संभावना है, और बंगाल में भी 3 सीट ऊपर होने का संभावना है, 22 दिया है, 25 तक वहां का संभावना है, बाकी कांति टामलोक और घाटाल ये सब सीट अच्छा है। ये आरंभाल तो केवल 4% वोटों से हरा था वो पिछली बार। कृष्णानगर भी एक प्रोस्पेक्टिव सीट है, वहां दमदम भी प्रोस्पेक्टिव सीट है, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ा गड़बड़ी हुई है। झारखंड तो ठीक है, आपका जो कहना 14 का 13-1 तो ठीक है। तो जहां तक यहाँ साउथ में आएंगे तो साउथ में आपको केरला में जो गलत दिया है, केरला में पिछली बार 15 सीटें ली थी कांग्रेस ने, उसको 5 करा दिया है, कांग्रेस ने वहां 12 सीट जीतने जा रही है, वहां कांग्रेस ने 12 सीट जीतने जा रही है। लेफ्ट को कल पिछली बार 1 सीट जीते थे वो आलापुरा को, जो केसी वेणुगोपाल हार गए थे वहां, इस बार लेफ्ट को 1 या 2 सीट मिलेगा, 1 या 2 मिलेगा, 1 ही मिलने का संभावना है। बीजेपी को 2 सीट मिलने का संभावना है, वो तो ठीक ही है आपने बताया, जो बाकी 2 सीट मलप्पुरम और पोन्नानी जो IUML लेंगे, फिर जो RSP है उसका जो प्रेमचंद्रन, वो कोल्लम से जीतेंगे वो। जहां तक तमिलनाडु का है, तमिलनाडु को भी आपने वो सही बताया है, लेकिन कांग्रेस को यहाँ केवल 5 दिया है, कांग्रेस हो सकता है 6 जीते यहाँ तमिलनाडु से, 5 भी हो सकता है, क्योंकि 9 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें 4 हारने के संभावना है कांग्रेस को। बाकी जो DMK का है पूरा का पूरा वो जीत रहे हैं। बीजेपी को 2 से लेकर 4 सीट वही है जो NDA को, अन्ना द्रमुक का 2 सीट होने का संभावना है। जहां तक जो आंध्र प्रदेश का है, वहां NDA को 17 दिया है वो संभावना है उसका, और इनको 8 दिया है, हो सकता है 8 या घटकर 6 भी हो सकता है। लक्षद्वीप तो इस बार INC जीतेगी करके बहुत लोग बता रहे थे, मुझे तो अभी भी ये है वहां NCP जीतेगी करके। अंडमान तो बीजेपी जीत रहे, क्योंकि पिछली बार तो 2500 वोट से वो कुलदीप राय शर्मा ने जीत लिया था, वो कैंडिडेट चेंज करने की वजह से, विजय जाली को लाया था बीजेपी ने, वो नया है, अभी तो पुराना द ओल्ड वॉर हॉर्स को लाया है, जो 1998 में थे वो उनको लाया है वो। कर्नाटक में मुझे ये कुछ सीटें फंसी फंसी है, लेकिन चुनाव जो नजदीक आते आते वहां 25-26 तो जीत जाएंगे, अभी 2 सीट हिजाफा होने का संभावना है, मेरा अपना आकलन है।
ओके,
आपने 24 दिया है
या आप? हाँ, साउथ के ऊपर थोड़ा आपका भी, अभिषेक जी आप भी साउथ के ऊपर कुछ निगाह रखते हैं संभवतः।
जी, मैं पहले कर्नाटका से शुरू करता हूँ, पिछली गलती को सुधारने का प्रयास है। चामराजनगर एक सीट है, चिकबेल्लापुर फंसी हुई है, चिकमंगलुरु फंसा हुआ है, और संभवतः दावणगिरी भी इस बार फंसा हुआ है। मांड्या में भी चीजें जो है वो ठीक ठाक नहीं है, वो सीट JDS को देने का लॉस दिख रहा है। तो ये 5 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस फाइट कर रही है NDA के अगेंस्ट में। इसी वजह से आज मांड्या की ही सीट को बचाने के लिए एक जो 90 साल के देवगौड़ा साहब मंच पर आए और कहा कि येदुरप्पा जी का और मेरा दोनों का एक्सपीरियंस मिलेगा, मोदी जी को 400 पार कराना है, उस एज में भी आकर के मंच पे आए ताकि JDS का पूरा वोट जो है वो ट्रांसफर हो सके बीजेपी में, बीजेपी का JDS सीट पे, तो ये प्रयास चल रहा है। मैं थोड़ा तमिलनाडु को लेकर के बात कर रहा हूँ सर। वेल्लोर की सीट, कृष्णगिरी और तिरुपुर, ये सीटें बहुत अच्छे पोजीशन पे है। इसके अलावे कोयंबटूर और वेल्लूर में मुझे कोई डाउट नहीं है कि मतलब बीजेपी वहां नहीं जीतेगी, लेकिन इसके अलावे भी जो फाइटिंग सीट्स है उस पे हमको नजर रखना है कि कितना परसेंट बीजेपी या NDA को वोट जा रहा है। जैसे नीलगिरीज जो है अगेंस्ट A Raja, वहां भी बहुत अच्छा मोमेंटम तैयार हो रहा है।
हमारे लिस्ट में तो नीलगिरीज मुरुगन जीत रहे हैं।
ओके okay, मैं अभी वही आ रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है कन्याकुमारी।
मुझे पता नहीं नागराजन जी क्या कहेंगे
कन्याकुमारी को लेकर के। वो मैंने नागराजन सर से पहले
मैं बात तो बता देता हूँ ना, इसमें पांच सीटें जो बीजेपी की लिखी है वो कौन कौन सी
वगैरह। जीतने का संभावना नहीं है, जीतने का सीटें हैं धर्मपुरी है, कृष्णगिरी में भी नहीं है, धर्मपुरी का सीट जीत सकते हैं। बीजेपी अपने वो जो नेतृत्व में अलायंस बनाया था तब भी जीता था उन्होंने। दूसरा है यहाँ दक्षिण में तिरुनेलवेली जीतने का संभावना है, तेनी जीतने का संभावना है वो एनडीए के, और पूर्व सीएम जो वो पन्नीरसेल्वम वो रामनाथपुरम, लेकिन वो भी इतना टक्कर है, कांटे का टक्कर है। और कन्याकुमारी क्या है, वो नाराजगी पार्टी के अंदर वर्कर्स का नाराजगी है,
और विरुधुनगर में अच्छा फाइट हो रहा है।
नहीं नहीं नहीं, विरुधुनगर में जो डीएमडी के विजयकांत का पार्टी वो लीड कर रही है अभी, कांग्रेस वहां हारेगी। जो कांग्रेस चार पांच सीट जो हारने का है उसमें विरुधुनगर भी एक है, तिरुनेलवेली भी एक है, ऐसा है वो। अन्नामलय क्या है, बहुत पहले बहुत काई थी, उसको तो ब्रिज कर लिया उन लोगों ने, वो अन्नामलय को जीतने का संभावना है, संभावना है, वो मैं पक्का नहीं कहूंगा, संभावना है। बाकी सब जगह उत्तर तमिलनाडु में 10 सीटें हैं, नीलगिरीज में तो नहीं जीत रहे
नहीं, नीलगिरीज तो मैंने मेरे भी लिस्ट में सर नहीं जीत रहे हैं कि मतलब ए राजा वहां पे फाइट अच्छा हो रहा है, लेकिन सर तिरुवनामलाई आप कैसे देख रहे हैं? और कारूर क्या है कि यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो बीजेपी को एज इसलिए मिल रहा है ये थंजावुर को लेकर के।
सर वो डेल्टा में बीजेपी नहीं जीतेगी, वो तिरुवनामलाई नहीं जीतेगी, 10 का 10 सीट में केवल वेलूर है, वेलूर में भी क्या है वहां दलितों का संख्या बहुत ज्यादा है, वो जो बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़े थे तब 70,000 के वोट में हारे थे, वो पिछली बार 8,000 वोट से हारे थे, तब एडीएम के बीजेपी के साथ थी, अभी तो उतना नहीं है, और मुस्लिम बाहुल इलाका है बहुत वहां, वो 6 असेंबली सेगमेंट पे 1-2 में तो मुस्लिम बाहुल है, इसलिए क्या है वहां, लेकिन संभावना है क्योंकि वो मैन विथ ऑल रिसोर्सेस वो जो कैंडिडेट है, और उनका थोड़ा सहानुभूति भी है, वो पिछले एमजीआर के समय में भी वो लोकसभा का एमपी था वो, इसलिए कुछ चांस है। लेकिन बाकी जो उत्तर तमिलनाडु में 10 सीटें हैं उसमें धर्मपुरी वो तो वेस्टर्न तमिलनाडु में आ जाएगा, किसी सीट जीतने की संभावना नहीं है, 2-3 सीट सेकंड आएंगे इतनी है।
ये जैसे मैंने तो 3 ही दिया ना सर, मेरे हिसाब से तो 3 ही दिया है, 4 पे फाइट है, यानी 7 सीटों का आकलन दिया जिसमें अभी वोट शेयर चुकी सर ने नहीं किया है, मैं बीजेपी को 3 ही दे रहा हूं।
उत्तर तमिलनाडु में बीजेपी और एनडीए लगभग लगभग 10 सीटों में से, जो चेन्नई सिटी को छोड़ दीजिए, 10 सीटों में से 7 सीट तीसरी नंबर पर आएगी उत्तर तमिलनाडु में, अगर पीएमके का गढ़ है उनको जो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, बीजेपी के पास संगठन ही नहीं है यहाँ, जो बाहर से देख रहे हैं जो अन्नामलय का जो रोड शो देख रहे हैं उससे कोई नहीं है, संगठन ही नहीं है, बूथ तक ले जाने वाले आदमी नहीं है यहाँ।
अभिषेक जी आप तो थोड़ा ये भी बताया ना त्रिवेंद्रम और त्रिशूर के बारे में, क्या आपके पास सूचना?
अभी एक आप लोगों ने फोटोग्राफ देखा होगा जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के पास जाकर के पहुंचे शशि थरूर और कहा कि देखिए लेफ्ट ने वहां पे लिटरली ऐसा माहौल बना दिया कि वहां का भी वोटर जो है वो बीजेपी को वोट कर रहा है, मेरी सीट रिस्क में है। सो ओवैसी साहब माधवी लता के अगेंस्ट मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, आप बदले में जो है वो हमको सपोर्ट कर दीजिए उस सीट पर, तिरुवनंतपुरम सीट पर, और त्रिशूर सीट भी बीजेपी होपफुली जीत जाएगी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये दो ही सीटें हैं केरला में जहां पर बीजेपी ये कर सकती है, लेकिन फाइटिंग सीट नागराजन सर ने नहीं बताई जिसपे मैं नजर रख रहा हूँ, एलएपी अलफूजा सीट, अलफूजा सीट पर भी बीजेपी अच्छा फाइट संभवतः कर सकती है, जीतेगी नहीं ये मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ये देखना है कि केरला में कुछ सीटों पे बीजेपी का वोट शेयर कहां जाता है, जैसे अतिंगला अलफुजा, आरलाहूर, ये तीन सीटें हैं जहां पर इनका वोट शेयर कितना जाता है बीजेपी का, ये मार्क करने वाली बातें होंगी। मुझे पता नहीं है कि आप लोगों ने आंध्र प्रदेश में बीजेपी को क्या क्या सीटें दे रही है, आकारू, नरासपुरम, तिरुपति, ये सीटें तो बीजेपी लेके जाएगी सर।
तो तीन ही दी है ना उसमें, तीन दी भी है। आप म्यूटेड हैं नागराजन।
राजा, अच्छा राजमपेट में भी बहुत अच्छा फाइट कर रही है, बहुत अच्छा फाइट हो रहा है राजमपेट में भी।
राजमपेट में तो पुराना मुख्यमंत्री है वो किरण कुमार रेड्डी, जो अंडिवोटेड आंध्रा का लास्ट मुख्यमंत्री था, वो लड़ रहे हैं। वो तिरुपति में तो यहाँ चेन्नई का कलेक्टर थे एक वरप्रसाद राव करके, वो शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट है, उसमें लड़ रहे हैं। वहां तो तीन की जगह चार भी जीत सकते हैं। केरला में अलपुड़ा वगैरह में अभिषेक जी तीसरी स्थान पर ही है, अट्टिंगल और पतनमतिट्टा और पालकाड है, पालकाड में भी तीसरी स्थान, लेकिन 30% वोट लेंगे।
मैंने वही बोला नागराजन सर कि मुझे वोट शेयर से मतलब है कि क्या यहाँ पर वोट शेयर
आलपुड़ा वगैरह तीसरी स्थान पर आएंगे। आलपुड़ा जो वहां जो वायनाड में क्या है, पिछली बार जो बीडीजेएस का वो अध्यक्ष है वो लड़े थे, उनका जमानत जब्त हो गया, इस बार वो नहीं होगा, जमानत लेने के लिए लड़ रहे इतने।
नहीं,
3,200 देते हैं
सर। अलापूजा में भी अगर 30% बीजेपी को वोट शेयर आ रहा है तो मेरे हिसाब से केरला में और तमिलनाडु में भी, जैसे अब हम वोट शेयर को मैं देख रहा हूं कि ये डोर
हम वोट शेयर को देख ही नहीं रहे इस बार।
अब अच्छा एक सीट और मैं बताऊं, राजमुंद्री के बारे में सर किसी ने बात नहीं की, राजामुंद्री में भी बहुत अच्छा आंध्र प्रदेश में बीजेपी फाइट कर रही है। क्या बोले नागराजन सर, पता नहीं,
म्यूट है
कौन?
राजमुंद्री सर के बाद, राजमुंद्री में भी बीजेपी अच्छा फाइट कर रही है सर आंध्र प्रदेश में,
बिल्कुल।
हाँ वो बस वही कंफर्मेशन चाहिए था।
तो ये तो है, और इसमें जो है वो ओवरऑल, जरा एक मिनट जरा
फिगर संजय जी, मैं एक टिप्पणी कर देता हूँ। तेलंगाना में क्या है, 4 जीते थे पिछली बार, अभी 7 होने का संभावना है। मैं सीटें कह देता हूं, मेडक, महबूब नगर, शेवल्ला और मल्काजगिरी, ये चारों में से 3 या 2 आएगा। आप लोगों ने दिया 5, ठीक है बराबर, मैं तो उसको कंजर्वेटिव एस्टिमेट अच्छा है ये तो, ये इस 4 नए सीटों में 2 या 3 आने का संभावना है।
ओके,
मेरा भी मानना है महबूब नगर बीजेपी जीते,
पुदुचेरी इज अ स्विंग सीट, महबूब नगर तो पिछली बार बहुत कम वोटों से हारी है।
तो अब एक बार
पुदुचेरी भी, क्योंकि पुदुचेरी में क्या है, पिछले 6 में से
आपके वो गड़बड़ हो गई, ये फिगर है फाइनल जिसको मैं, इसमें जो विशेष बात ये है कि कुछ तमिलनाडु में कम बता रहे हैं तो तेलंगाना आंध्रा में ज्यादा भी बता रहे हैं, तो ओवरऑल इसमें देखने की बात यह है कि बीजेपी की 39 और कांग्रेस की 23 दी है। तो यदि अब नागराजन जी की बात मान लें तो भी बीजेपी की सीटें यहां पर कांग्रेस से ज्यादा आ रही हैं, ये विशेष बात है देखने की, जिसको लेके हमारे राहुल गांधी जी चारों तरफ हल्ला किया करते हैं। एनडीए 60 और एनडीए 47, ये लगभग ये प्लस माइनस 5 कर लीजिए जो हमारा रेंज है उसके अनुसार इसमें आ रही है। चलिए अब हम चलते हैं पश्चिम की ओर, पश्चिम, तो पश्चिम में आरंभ करेंगे हम महाराष्ट्र से, और ओंकार जी से हम पहले महाराष्ट्र लेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूँ, गोवा 211, दमन दीव 1, बीजेपी दादरा नगर 1, बीजेपी, महाराष्ट्र 48, और इसका जो है ब्रेकअप दिया गया है एनडीए की 40 है, एसएस 10, एनसीपी 3 और 27 बीजेपी। अब ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 29 या 30 पे लड़ेगी, अभी 9 ऐसी हैं जिनका फैसला नहीं हुआ किस पे कौन लड़ेगा। और शिवसेना 6 एनसीपी, 2 कांग्रेस की इसमें 0 बताई जा रही है। गुजरात में 26 की 26, राजस्थान में आज की डेट में कम से कम 5 सीटें कांग्रेस को जा रही है, 6 भी हो सकती है। एमपी में 2 सीटें कांग्रेस को यहाँ जाती दिख रही हैं, और वो उनमें से एक राजगढ़ है और दूसरी सतना है। सतना में मामला कमजोर चल रहा है। छिंदवाड़ा अभी कांग्रेस पीछे है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10, और राजनंदगांव जो है वो बघेल निकाल ले जाएगा, ये इसकी है। और हम चलते हैं सीधे ओंकार जी के पास। ओंकार जी, महाराष्ट्र
देखिए, महाराष्ट्र इसलिए दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है क्योंकि 2019 और 2024 के बीच में वहां काफी कुछ घटा है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुए थे, शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़कर के कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई थी, और सब जानते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, 23 सीटें जीती थी। शिवसेना ने भी 18 सीटें जीत ली थी, मोदी जी का बड़ा बड़ा होर्डिंग और पोस्टर लगा करके। दोनों को, बीजेपी को 28% मिले थे, इनको 23% मिले थे। कांग्रेस को वो चंद्रपुर वाली सीट मिली थी, बस एक ही सीट मिली थी 48 में से, और शरद पवार की यूनाइटेड एनसीपी को केवल 4 सीटें मिली थी। 2 अन्य को गई थी, एक तो जो आपकी वो अमरावती से निर्दलीय थी, और एक औरंगाबाद वाली सीट जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गई थी। जो इस बीच 5 साल में घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र में, मुझे लगता है कि देश के किसी और राज्य में ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ। वहाँ पर एनसीपी भी टूट गई, वहाँ पर शिवसेना भी टूट गई। हालांकि शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे के समय भी टूटती फूटती रही, कभी छगन भुजबल, कभी कोई दूसरे, वो बाहर जाते ही रहे। नारायण राणे भी उन्हीं के टाइम चले गए थे, पर इस बार जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे उन्हीं की पार्टी के नेता जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए, और उधर फिर एनसीपी टूट गई तो शरद पवार साहब के तो भतीजे ही टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और उप मुख्यमंत्री पद को प्राप्त हो गए। अब मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि साहब बारामती में क्या होने वाला है। बारामती में
तो कल भाऊ से बात हो रही थी मेरी, तो कह रहे थे बारामती में तो निश्चित रूप से सुनेत्रा पवार ही जीतेंगी।
तो ये अगेन एक और बड़ी पटकी होगी भतीजे की तरफ से चाचा को, और वैसे भी चाचा की उम्र भी हो चुकी है, उनकी राजनीति भी ओवर हो चुकी है। उनकी बेटी ही अगर बारामती में हारने जा रही है तो उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दी एंड है शरद पवार की राजनीति का महाराष्ट्र में। वैसे भी महाराष्ट्र के नेता तो पूरे महाराष्ट्र के नेता तो वो कभी भी नहीं रहे, और पूरे महाराष्ट्र के नेता कभी बाला साहब ठाकरे भी नहीं रहे। ये कुछ कुछ पॉकेट के लीडर रहे हैं। कांग्रेस की बदौलत ये मुख्यमंत्री बने, हालांकि पहली बार तो वसंत दादा पाटिल से दगा करके और किस किस तरीके से जोड़ तोड़ करके 38 साल की उम्र में ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे, लेकिन बाद में भी जो इनका कुल मिलाकर के राजनीति रही है, तुम ही से मोहब्बत तुम ही से, तो उस अंदाज में सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा बना करके कांग्रेस से बाहर गए और फिर कांग्रेस के साथ ही मिलकर के चुनाव भी लड़ लिए और फिर सरकार भी बना ली। तो महाराष्ट्र में संजय जी जो आप लोगों का आकलन है बहुत हद तक मैं उससे सहमत हूँ, महाराष्ट्र में ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। हाँ, बड़ी कैजुअलिटी जो है वो इस बार उद्धव ठाकरे की पार्टी की होने वाली है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से 18 सीटें जीत ली थी, और उनको जितनी आप सीटें दे रहे हैं उसमें भी दरिया दिली ही दिखा रहे हैं मुझे तो लगता है। उतनी सीटें भी उनकी आएंगी मुझे लगता नहीं है, और जो जो ओवरऑल जो आपने दिखाया है तो वो भी बहुत हकीकत के करीब है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी।
कांग्रेस कांग्रेस की जीरो से सहमत है आप?
मैं इसलिए सहमत हूं कि कांग्रेस में सब कुछ वहां ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और कांग्रेस का वहां पहले भी, जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, कोई वो बहुत बड़ी पार्टी नहीं रही है। पिछली बार भी केवल चंद्रपुर की सीट जीत पाई थी वो, और विधानसभा में भी सबसे छोटी पार्टी वही है, 44 सीटें उसके पास हैं। उसके बाद तो फिर 54 सीटें जो हैं वो एनसीपी के पास थी, 56 शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थी, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी तो 100 सीटों से ऊपर चली गई थी, 105 या 106 सीटें आई थी। तो महाराष्ट्र का तो बिल्कुल आपका आकलन सही है, और उसमें कुछ इफ एंड बट मुझे लगता नहीं है। जो दूसरे राज्य हैं, एक बार
महाराष्ट्र पर पहले और ओपिनियन ले लेते हैं
जी,
और लोगों से फिर आगे चलेंगे। तो वीरेन जी, आपका कोई ओपिनियन है महाराष्ट्र पे? म्यूटेड है आप, म्यूटेड है,
सॉरी।
अब म्यूट हो गए आप,
आवाज आ रही है?
हाँ, आवाज,
हाँ, अब ठीक है।
जो महाराष्ट्र में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, उससे बड़ी बात जो मुझे लग रही है, और जो बहुत ही संक्षिप्त में रिपोर्ट हुआ है अब कुछ अंग्रेजी अखबारों में, कि शिवसेना के दोनों गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट, ये चार पार्टियां सीट जीतने से ज्यादा अपना अपना वोट शेयर बचाने में लगी हुई हैं कि भाई कम से कम हमारा अस्तित्व कायम तो कायम रहे चुनाव के बाद। ये बड़ी चीज हो रही है। और दूसरी बात, जो जिस तरीके का जो मराठा समाज है, जिस तरीके से वहां पे आरक्षण को लेकर आंदोलन चला था, और जिस तरीके से उसको शिवसेना के मुख्यमंत्री ने, शिंदे साहब ने उसको डिफ्यूज किया, वो क्या वाकई में डिफ्यूज हो गया? उसमें किसका नुकसान हुआ, उसके और उसके और उसके कौन थे स्पॉन्सर? और जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर जो है किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए, वो अकेले वो अलग जा रहे हैं, मुझे लगता है इसने भी कहीं ना कहीं अपोजिशन को कमजोर किया है महाराष्ट्र में, और ये राह आसान की है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके का रायता वहां फैलाया है, शिवसेना को भी तोड़ा, एनसीपी को भी तोड़ा, अजीत पवार को पहले कहा चक्की पीसिंग जेल जाएंगे, अब उससे दोस्ती कर ली, तो अब ये जो सीटें फंसी हुई हैं 9 सीटें, ये इसके बारे में खूब चर्चा हो रही है भाई क्यों फंसी हुई है, किस मुद्दे पे आपने शिंदे से दोस्ती की थी, किस मुद्दे से आपकी दोस्ती हुई थी अजीत पवार से?
वैसे वीरेन जी, कल बड़ा मासूम जवाब आया है अमित शाह का। उनका कहना ये है कि साहब, ना हमने एनसीपी को तोड़ा, ना हमने शिवसेना को तोड़ा। ये शिवसेना इसलिए टूटी क्योंकि वो पुत्र मोह में फंसे हुए हैं उद्धव ठाकरे, और शरद पवार की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि वो पुत्री मोह में फंसे हुए हैं। तो वो हमारा कोई कसूर नहीं है।
फेविकोल की वैधता समाप्त हो गई थी, उसकी वैलिडिटी वो केवल 5 साल की थी, तो जैसे ही 5 साल पूरे हुए वो टूट गए। तो अब तक जितने आपने राज किए, आपने बहस की है, चर्चा की, दीक्षित जी, संजय जी, बंगाल के अलावा यूपी अकेला राज्य है जहां पे 7 चरणों में चुनाव होगा। बंगाल के
बिहार भी है सर, बिहार भी है सर,
अच्छा बिहार भी, आई एम सॉरी। और यूपी में एक बात है, 2014 से लगातार ये कोशिश चल रही है कि भाई बीजेपी को अगर यूपी में रोक लिया तो दिल्ली में रोक लेंगे। 2022 के असेंबली चुनाव में एक सुनाम धन्य महान किसान नेता है श्री योगेंद्र यादव।
अभी हम यूपी की चर्चा नहीं कर रहे वीरेन जी।
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आइए आइए।
तो अब हम आगे चलते हैं फिर। अभिषेक जी बताइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश पर आपके क्या ओपिनियन है जो इसमें दिया हुआ है? सर नागराजन जी, इसके बाद आपके पास आते
सर। ऐसा है, महाराष्ट्र के लिए मैं पूरी तरह से एक ही आदमी गुरुजी के पास साथ डिपेंड करता हूं, और मैं फोन करता हूं भाऊ को और बोलता हूं गुरुजी क्या सीन चल रहा है, और एक सीट स्पेशली सुप्रिया सुले का क्या होना है। उन्होंने फोन पे बोला कि इस बार बेटे सुप्रिया सुले भी हारेगी। तो मैं लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करता, लेकिन महाराष्ट्र में एक पॉइंट पर अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ। संजय निरुपम को कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम हुई? संजय निरुपम
वो तो बता ही दिया था वो वो भी भाव ने बता दिया था, मैं परसों डिस्कस किया था उनसे।
हाँ, मेरी मेरी कल हुई थी। तो अब जो संजय निरुपम ने जो ये एक स्टैंड लिया है, तो ये पोल इतना पहले, अब मुझे पता नहीं ये कब का पोल है, लेकिन कांग्रेस को जीरो सीट देने के लिए सबसे पहले चिंतामणि सर को बधाई, उन्होंने ये भी भाप लिया था कि संजय निरुपम अपने साथ साथ जो बचा कुचा कैडर है उसका मोबाइल भी फोन स्विच ऑफ करा देंगे। कांग्रेस वाले प्रचार प्रसार के लिए भी जिसको फोन लगा रहे हैं वो भी फोन नहीं रिसीव कर रहा है, छोड़ना यार रखते हैं, फालतू में किसका फोन आ रहा है, सब तो
दो, अपने दो, वाले हैं। दो दो भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने महाराष्ट्र का दौरा किया है, ये बहुत अन्याय की बात है कि उस महाराष्ट्र में एक भी सीट नहीं मिल रही है, बहुत ही
अगली बार अन्याय यात्रा कराएंगे ना सर।
नागराजन जी से महाराष्ट्र ओपिनियन ले लेते हैं जी।
एक बार है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का एक किस्म का जो वहां का जो जो पॉलिटिकल जो डायनामिक्स है ये आके अटक गया वो 27-28 फीसदी वोट में। कांग्रेस का वोट शेयर टर्मिनली डिक्लाइन, वो 2010 में 21 फीसदी था, वो 9-10 में वो घटकर आपको हो गया था 18 फीसदी 2014 में, फिर 2014-19 में जो असेंबली इलेक्शन में वो 17 फीसदी में घट गया, फिर 2019 में 16, और जो अभी जो 2019 का असेंबली इलेक्शन में 15.5 एक है, जो वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से पिछली बार 8 सीटें बीजेपी ने निकाली जो वोट कटने के वजह से, लेकिन एक सीट वो जो जो अहिर है वो चंद्रपुर से वो हारे हैं वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से आ रहे हैं, लेकिन 8 सीट परभनी से लेकर आपको कोल्हापुर से लेकर 8 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी अभी तो नहीं है, इसलिए क्या है कांग्रेस को, लेकिन वो 27 सीट आप दे रहे हैं ना मुझे, उसमें
नहीं
इसलिए फायदा होगा इनको, एनडीए को ही फायदा होगा, लेकिन एनडीए को 27 एनडीए 24-25 में वो सिमट जाएगी करके मुझे
महाराष्ट्र 24
जहां तक जो एनडीए नहीं है बीजेपी बीजेपी
ठीक ठीक
बीजेपी 27 दे रहे हैं बीजेपी
वो तो एनडीए इसमें क्या है लड़ते कितनी है वो
नहीं नहीं वो तो 27 तो अनाउंस कर दिया है ना उन्होंने, ये फंसी हुई है
कुछ अनाउंस है और अभी 3-4 सीटें और लेंगे वो।
अच्छा
अभी 27 अनाउंस ठीक
है नहीं, तो फिर भी
जो, ये जो कैलकुलेशन है ये 30 के हिसाब से
इनका टोटल बेनिफिट क्या है, जो पार्टी टूटने के बाद भी यदि 3 सीट उधर से जीत रहे हैं 2 सीट इधर से जीत रहे हैं तो एनसीपी के लिए फायदा है, एनसीपी तो पहले 4 सीट था अभी तो 5 सीट हो गया, उनको तो यदि आपका जो अनुमान को सही ले लें फिर शिवसेना को 18 से केवल 16 में आ गया मेरे ख्याल में, इसलिए उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, कांग्रेस को 1 सीट था वो भी चला, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वो कांग्रेस भी 1 सीट निकालेगी करके मुझे ये है ठीक है। और राजस्थान क्या है, आपने कहा 5 सीट है, मुझे क्या है जो इसमें राजस्थान में क्या 7-9 फीसदी का फासला है जो डिफरेंस है जो असेंबली और लोकसभा का जो कांग्रेस का वोट शेयर में, और बीजेपी के तो 15-20 फीसदी के तक चला जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं वहां जो जो एरिया वाइज जैसे जो आपका जो चुरू सीट है फसाईगंज सीट झुंझुनू सीट है ऐसा कुछ है, या क्या है वो बाड़मेर है कहीं वो हैंडपंप का वगैरह से इसे वो 1-8 सीट निकाल देंगे, वो 22-23 सीट तक जीत सकते हैं करके, गुजरात तो है बाकी सब जगह।
अभिषेक जी आप बताइए जरा, राजस्थान एमपी छत्तीसगढ़ गुजरात हम डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर नॉट डिस्कसिंग गुजरात, अभी पुरुषोत्तम रूपाला वाली सीट डिस्कस कर लेंगे थोड़ी सी।
सर मुझे एक चीज कहना है, इस इलेक्शन में चुनाव तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस को निर्दलीय से गठबंधन करना था। मुझे एक बात कहना है बाड़मेर को लेकर के, यार आपने उसको बोला कि एबीपी का अध्यक्ष का टिकट नहीं दिया, वो आदमी निर्दलीय लड़ा चुनाव जीत गया, फिर आपने कहा कि विधानसभा में भी टिकट नहीं देंगे, वो आदमी निर्दलीय लड़ा फिर चुनाव जीत गया, अब वो लोकसभा में खड़ा है,
मैं जानना चाहता हूं बीजेपी की कोर टीम जो भी होगी कि भाई आइडियल कैंडिडेट विनिंग कॉम्बिनेशन के लिए पैरामीटर आपका क्या है। अगर वो भाटी अगर उस पैरामीटर में फिट नहीं होता है तो फिर मोदी जी एक पैरामीटर है क्या? क्योंकि फिर मोदी जी के अलावा तो ऐसा कोई है नहीं जो अपने नाम पे मतलब 10-15 लोगों को छोड़ दे, तो ऐसा तो कोई है नहीं जो अपने नाम पे जीत रहा है।
अब देखिए आपको मैं समझा लेता हूँ, क्योंकि बाड़मेर तो मैं बहुत लंबे समय तक स्वयं रहा हूँ, और बाड़मेर की जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और बाड़मेर की अब जो डिलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी उसमें अंतर है। ये पहले जो थी यहाँ पर एक जो राजपूतों की हेवी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पोकरण, वो निकल के पोकरण और शेरगढ़ दो जो राजपूतों की जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी असेंबली सेगमेंट थे वो निकल के जोधपुर में मिल गए, इसलिए जोधपुर जो है वो राजपूत हेवी हो गई। हाँ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बाड़मेर ये हो गई जाट हेवी। अब अगर आपके यहाँ 4.5 लाख जाट हैं और 3 लाख राजपूत ही है या 3 से भी कम बल्कि 2.5 लाख, क्योंकि राजपूतों का भी एक खास बात है राजस्थान में, वो क्या है कि जब इलेक्शन आता है तो वो सारे जितने भी ओबीसी राजपूत है ना जो लोअर कास्ट वाले जो राजपूत होते हैं तो उनको गिन लेते हैं, सीट उनको कभी नहीं देते।
हाँ।
और वैसे जो जनरल कास्ट वाले जो राजपूत है उनकी संख्या 1 लाख ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो सब साथ में जो होते हैं रावणे राजपूत दरोगा वगैरह ये सब मिला मिलू के वो जो आके करीब 3 लाख तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख संख्या जो है जाटों की वहां ज्यादा है। वहां पे खासतौर से जो बॉर्डर एरियाज हैं जो बॉर्डर के जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जैसलमेर है शिव है बाड़मेर है चौटन है, इनमें तो ये तीनों का चलता है, यानी कि फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपके बाड़मेर बायतू और गुड़ा मलानी वो तो बड़ी हेवी जाट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है।
हाँ वो है,
तो इसलिए वहां पर राजपूत को टिकट देने का मतलब नहीं बनता है, बेसिक बात ये है। तो इसलिए अब शिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीत गए तो शिव कॉन्स्टिट्यूएंसी की डायनेमिक्स अलग है, वहां पे राजपूत बहुत बड़ी संख्या में है शिव में और जैसलमेर में, और सिवाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी राजपूत ठीक ठाक है, बहुत बड़ी संख्या में नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक है, दूसरे जो ग्रुप है उनके साथ मिल जाते हैं राजपुरोहित हैं जैसे, और राजपुरोहितों को भी वो गिन तो लेते हैं, जो राजपुरोहित है वो ब्राह्मण है लेकिन उनको वो राजपूत अपने आप में गिनते हैं, टिकट उनको कभी नहीं लेने देते।
मेरा ये नहीं
भैया, राजपूत जो है वहां से अल्टीमेटली आप देखिएगा कि मुश्किल ही जीतेगा।
नहीं नहीं मेरा वो कहना नहीं है सर, मेरा ये कहना है कि आपने हर जगह ये
जसवंत सिंह जी नहीं जीते थे।
हाँ बिल्कुल नहीं जीते थे, मैं तो कह रहा हूँ
जसवंत सिंह जी जब नहीं जीत पाए तो अब आप जो है वो किस हिसाब से इन श्रीमान जी को जिता देंगे।
नहीं मैंने ये नहीं कहा निर्दलीय जिता नहीं रहे, ये जो इस प्रकार के निर्दलीय खड़े हो रहे हैं वो आपको हरा रहे हैं। मैं
जी कुछ बोल रहे
एक ही प्रश्न है आपसे, वो जो हैंडपंप वाला वो कहाँ कैसे वो 20 हैंडपंप का 2 हैंडपंप का वो ये रविंद्र भाटी को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेके गए फिर भी क्या है वादा नहीं दिया है करके वो क्या हुआ उसका?
उसी की तो बात कर रहे हैं ना, वही तो है ना राजपूत के बारे में उसी की बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं उसी का कह रहा हूँ यार,
मेरा ये कहना
है कि चीफ मिनिस्टर
नहीं नहीं वो नहीं नहीं ये तो राजपूत कैंडिडेट को टिकट कोई भी पार्टी जो है वो देगी नहीं, यहाँ से बाड़मेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉट राजपूत हेवी, इट इज जाट हेवी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से जाट को ही टिकट मिलेगा ये निश्चित बात है, ये तो दुराग्रह है। आइए जरा हम पश्चिम का ओवरऑल देख लेते हैं, आपने मेरे को मध्य प्रदेश नहीं बताया।
मैं बता रहा था आपने टोक दिया सर, सतना पे चिंतामणि सर का कहना है कि फंसी हुई है। अब ये थोड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि गणेश सिंह जी स्वयं कुर्मी जाति से हैं और वो कुर्मी बहुल एरिया है सर, इसीलिए विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी इनको टिकट मिल गया क्योंकि वहां कुर्मियों का होल्ड बहुत ठीक ठाक है, उस पे जैसे ही मोदी जी का अलग वोट बैंक चढ़ेगा सतना सीट निकल जानी है सर जी, बाकी एकदम एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी।
चलिए तो 143 सीटें हैं यहाँ पर, वेस्ट में इसमें से 113 मिल रही हैं बीजेपी को और एनडीए को 126 और कांग्रेस को 9 और इंडी को 17। अब चलते हैं हमारे अंतिम बम्पर एडिशन यानी कि नॉर्थ में, और नॉर्थ की स्थिति आपके सामने रख देते हैं। जेएनके 5 में से 2 ही जीतेंगे, बाकी सीट इस बार नहीं जीतेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है,
पक्की बात
लद्दाख की सीट नहीं जीतेंगे। और तीनों जो है वैली की जो तीनों सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। चंडीगढ़ ये एक निकल जाएगी, इन्होंने मनीष तिवारी को टिकट दे दिया है, फाइट तो अच्छी देगा लेकिन जीतेगा नहीं। पंजाब की 13 सीटों में, पंजाब में इस बार कुछ अनहोनी होने वाली है, तो इस बार 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, यहाँ पर 1 कांग्रेस को, आम आदमी को 6 और सैड यानी शिरोमणि अकाली दल इज रियली सैड हरियाणा की 10। इस बार मैं रोहतक इसमें जो है वो दे रहा हूँ हुड्डा, सन हुड्डा लड़ेंगे या कौन लड़ेगा, लेकिन रोहतक सीट यदि हुड्डा में से कोई लड़ता है तो वो चली जाएगी कांग्रेस को। दिल्ली की 7 की 7 तो बीजेपी को है, हिमाचल की 4 ऑल 4, यूके की ऑल 4, यूपी की 80 में से 70 बीजेपी को, 5 उनके सहयोगियों को और 4 एसपी को, बीएसपी को 1 सीट इसमें दी है। और इसमें जो है ये मैं वीरेंद्र जी से और ओंकार जी से पूछूंगा विशेष तौर से कि ये जो है ये राजपूत विद्रोह के पहले का है उत्तर प्रदेश का आकलन, तो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि ओंकार जी को बहुत अच्छा आइडिया है, धीरेंद्र जी
नहीं,
से
मैं ओवर की थी इसमें, ओवरऑल ही आपको बता देता हूं, ये राजपूत विद्रोह नाम की कोई चीज है नहीं एक्चुअल में, ये सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ तत्व हैं जो जैसे बुलबुला होता है वैसे ही उसको फुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब संजीव बालियान के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, जी ना जाट ही नाराज है, राजपूत भी नाराज है, मतलब सारे ही नाराज हैं। संजीव बालियान सीट निकाल रहा है, आराम से निकालेगा वो, और जो बाकी के क्षेत्रों में ये जिस तरह की ये पंचायतें और महापंचायतें हो रही हैं तो उनको जो है सोशल मीडिया पर तो इनको खूब लाइक मिल रहे हैं और कमेंट मिल रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि जमीन पर इनके पैर नहीं हैं। अब वीके सिंह का टिकट कट गया है या किसी दूसरे का टिकट कट गया है उसको लेकर के आप बवाल करेंगे, और ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट में अगर देरी हो रही है, और वो भी ऐसा नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला है, उनको संकेत भी दे दिया गया है कि टिकट आपको मिलेगा, लेकिन एक रणनीतिक जो है वो एक फैसला है कि जब ये हरियाणा में वेस्ट यूपी में चुनाव निपट जाएंगे, मतदान निपट जाएंगे, उसके बाद उसके टिकट का ऐलान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं ये जानबूझ करके की जा रही हैं, और जिन तत्वों की तरफ मैंने इशारा किया है वो तत्व कोई और नहीं है, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे प्रेरित कुछ लोग हैं जो इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट यूपी में बहुत सारे लोगों के पेट में इसलिए भी दर्द है कि जयंत चौधरी जो है वो अचानक अखिलेश भैया का साथ छोड़कर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं वो। लेकिन अगर आप पूरे इलाके में जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, मैं किसी बागपत की बात नहीं कर रहा या मुजफ्फरनगर की बात नहीं कर रहा, आप मेरठ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो जाट कम्युनिटी है अगर वो थोड़ा बहुत वोकल थे भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वह अब बिल्कुल नहीं है। और चौधरी चरण सिंह को जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया है उससे तो वो पूरी तरीके से ग्लैड ग्लैड हैं, और मुझे नहीं लगता कि संजीव बालियान के खिलाफ जिस तरह की मुहिम चलाई जा रही है या दूसरे लोगों के खिलाफ, क्योंकि जब जब आप इस तरह की मुहिम शुरू करते हैं किसी के खिलाफ तो जो एक रिवर्स उसका एक वो होता है वही हमें मुजफ्फरनगर में भी देखने को मिलेगा। बाकी कोई ऐसा अंडर करंट है उनके खिलाफ के जो हमें नहीं दिखाई दे रहा तब की अलग बात है, पर ओवरऑल उत्तर प्रदेश में जो आपने टैली दिखाई है मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं है। मैं पंजाब पर और हरियाणा पर भी एक टिप्पणी करूंगा। पंजाब में मेरे पास करीब 1.5 महीना 2 महीना पहले भटिंडा से किन्हीं डॉक्टर साहब का फोन आया था, गोयल साहब थे, और उनका कहना ये था कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ठीक तरीके से कैंडिडेट दे दिए तो आप देखेंगे कि पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि एक अंडर करंट है लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, एक जो प्रो इनकम्बेंसी होती है वो देखने को मिल रही है, और ऊपर से जरूर ये सब ये शंभू बॉर्डर, कनौरी बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर पर मोर्चेबंदी हो रही है, लेकिन इसका रिएक्शन है लोगों में वहाँ पर। उन लोगों का कहना है कि इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, ये ब्लैकमेलिंग भी करते हैं मार्केट में आकर के और लोगों को परेशान भी करते हैं रोड वगैरह रोक करके। तो पंजाब में जितनी सीटें आपने दिखाई हैं इससे ज़्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और हरियाणा में बिल्कुल आपका सही आकलन है, रोहतक से अगर दीपेंद्र हुड्डा को ही टिकट मिल गया, हालांकि मुझे लग रहा है कि हुड्डा फैमिली खुद संकट में घिरी हुई है, उनको अपने ऊपर उतना यकीन नहीं हो पा रहा, क्योंकि दीपेंद्र इस समय राज्यसभा में है और वो राज्यसभा की सीट उनको छोड़नी पड़ेगी, और ये एक धर्म संकट है। पर हाँ, पिछली बार भी रोहतक से बहुत कम वोटों से दीपेंद्र हारे थे, दीपेंद्र को टिकट मिल गया तो ये सीट ऐसी है कि जो इस बार कांग्रेस को चली जाएगी, बाकी 9 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएंगी, ऐसा ये माना जा रहा है और जमीन से रिपोर्ट्स आ रही है।
वीरेन जी,
पहले हरियाणा के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, कि वीरेन सिंह क्यों छोड़ के चले गए बीजेपी से वापस कांग्रेस में, क्या उनके लिए नया आकर्षण था वापस?
उनके बेटे का टिकट कट रहा था
तो कौन सा उनका बेटा फिर से उस दूसरी तरफ जाके जीत जाएगा?
बेटा तो जीतने की स्थिति में नहीं था ना, इसलिए उसका टिकट कट रहा था।
तो संजय जी, यहाँ पे 3 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन सबसे आखिरी नंबर उत्तर प्रदेश का आया है, कोई बात नहीं।
ऐसा है कि जो 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 सबसे स्वादिष्ट चीज होती है ना वो लास्ट में आती है।
चलिए, तो सर यूपी में मैं पहली बात जब बता दूं, समाजवादी पार्टी के लोग इस बात से बहुत परेशान हैं और वास्तव में बड़ा इससे मनोबल गिरा हुआ है, जो बात सामने आती नहीं है। ये जो लगातार बीजेपी डंका पीट रही, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो वो कह रहे हैं हमारे लोग हमको शक की निगाह से देखते हैं, यार क्या कर रहे हो आप लोग, बीजेपी कैसे 400 पार जा रही है, हमारे लोग ही हमको शक करते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग भाई। तो वो, और एक नेता यहाँ तक बोला कि जो उनकी पत्नी उन पर शक कर रही थी कि आप लोग बिल्कुल नहारा हो क्या, ये बीजेपी वाले सुबह शाम का वोट दे 400 पार 400 पार, क्या कर रहे हो आप लोग, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता आपका। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और दूसरी कांग्रेस को
सर पत्नी शक कर रही है वाला लाइन रिपीट किया जाए
अभी।
ये तो क्लिप, ये तो कोटेबल कोट हो गया, क्लिप करने लायक है, तो चलेगा बढ़िया शॉर्ट में।
एक व्यक्ति जो 4 बार विधायक रह चुका है और वो पार्लियामेंट लड़ना चाहता था, उसको टिकट नहीं मिला, तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक ही नहीं मिला, तुम लोग लड़ने काबिल नहीं हो, जब बीजेपी 400 पार जा रही तो तुम हो कहां भाई लड़ाई में। तो और तो उसके अलावा जो है, अच्छा अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर, 17 सीटें उसको मिली हैं, बड़ी मुश्किल में उसने जोड़ तोड़ के 1500 सीट उसने कैंडिडेट जुगाड़ कर लिया। एक समाजवादी पार्टी के वाले को अपने यहाँ लिया डेपुटेशन पे इलाहाबाद से, उज्जवल रमन सिंह को, और 2 सीटें अभी तय नहीं है, ना रायबरेली और ना ही अमेठी, और इतनी अटकलबाजियां चल रही है, रॉबर्ट वाड्रा आएंगे, प्रियंका आएंगी, लेकिन सर वो राजाओं का जो है का युग चला गया, कि आए आपने दर्शन दिया, हाथ हिला दिया और लोगों ने वोट दे दिया, दैट एरा इज लॉन्ग ओवर। मैं कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे सकारात्मक जो जो योगदान है कि उन्होंने फ्यूडलिज्म को और जो अभिजातवाद राजनीति में था उसको खत्म किया। वो अलग बात है कि वो नए फ्यूडल और न्यू इलीट बन गए। वो ये अपने आप में बहुत दुखद है। इट्स ए वेरी सैड कमेंट्री ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ यूपी। तो ये हाल है। और जो तीसरी बात हो रही है कि बीजेपी 2014 से अभियान चला रही है गैर यादव पिछड़ा वोट और गैर जाटव दलित वोट। तो अब कुछ कुछ यही अब नकल की है समाजवादी पार्टी ने। केवल चार यादव को टिकट दिया है 63 सीट में और बड़ी संख्या में उन्होंने जो है शाक है कुशवाहा है और लोध है उनको टिकट दिया है। और आज के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में अयोध्या को ऐसा फ्लिप किया है। अब तक जो है ये परंपरा बन गई है यूपी में पिछले चार दशकों से कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का ट्रम्प कार्ड खेला। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को मुद्दा बनाया। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो लोग 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए उन्हीं के लिए अयोध्या राजनीतिक मुद्दा है। तो आज उन्होंने उस मुद्दे को ही पलट दिया। और जो सबसे बड़ी बात जो यूपी में देख रहा हूं मैं, यहां विपक्ष के पास जनता के बीच जाकर के बात करने के लिए टॉकिंग पॉइंट ही नहीं है। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का जो आज का भाषण बिहार का है आप सुन लीजिए, आप देखिए कि उनके पास बिहार में जनता से संवाद करने के लिए मुद्दों की भरमार है। यहाँ हमारे अखिलेश यादव के पास मुजफ्फरनगर की मीटिंग में उनके वही मुद्दे हैं जो पिछले 5 साल से वो डेली प्रेस नोट जारी करते हैं। वो कहते हैं कि हम नई पेंशन स्कीम ले आएंगे, हम MSP की लीगल गारंटी ले आएंगे, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी है और यहाँ पे आवारा पशु है। ये वो नहीं कहते कि अगर योगी जी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है इसके कारण गाय सांड बैल खेतों में घूम रहे हैं। अरे आप में दम है तो आप ये मांग कीजिए कि गो हत्या पर प्रतिबंध हटाया जाए। ये मांग करने का उनमें साहस नहीं है। लेकिन वो जो है रोड जो है सब आवारा पशु, अब एक नया मुद्दा जुड़ गया है सब, खाद महंगी कर दी आपने। तो बीजेपी ने खाद महंगी कर दी, आज से नया शुरू हुआ। हाँ, खाद महंगी कर दी, यूरिया महंगी हो गई। अब मुझे ये नहीं मालूम कि अप्रैल के महीने में कौन सी फसल होती है यूपी में जहां खाद यूज होती है। अप्रैल के महीने में गेहूं कटता है, यहां इस समय कोई फसल नहीं होती, ना आलू की होती है, ना प्याज की होती है, ना सब्जियों की होती है और ना ही और धान की बुआई भी शुरू होती है जुलाई में, बल्कि यूपी में और लेट होती है, आप जानते ही है, पानी वानी बरसने के बाद होती है। तो अब नया शुरू हो गया। तो आज और
वीरेन जी वो खटाखट वालों को क्या मिलेगा ये तो बताओ। उत्तर प्रदेश में
कौन खटाखट?
अरे सर अलग ट्रोलिंग चल रही है पे।
और यूपी में बीजेपी का जो लाइनअप है वो इतना स्ट्रांग है, ये मेरे जन्म होने के पहले से कहा जा रहा है कि भारतीय जनसंघ बनियों की पार्टी है। 1980 6 अप्रैल को वो भारतीय जनता पार्टी हो गई। अब आज बीजेपी के पास के खिलाफ जो पारंपरिक जो इनके पास फटकारने के और हकारत भरे जो इनके पास थे मुद्दे वो सब खत्म हो गए। आज बीजेपी जो मनुवादियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, उसके साथ चार जाति छोटी छोटी जातियों पर आधारित पार्टियों का गठबंधन है। राष्ट्रीय लोकदल है, अपना दल है, निषाद पार्टी है और एक कौन सी है वो ये आपका ओम प्रकाश राजभर, ये चार पार्टियां उनके साथ हैं। तो बीजेपी का अपना जो कास्ट लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है, किसी पार्टी से बेहतर है। और ये 2014 से अभियान चल रहा है कि बीजेपी को अगर रोक लिया हमने यूपी में तो दिल्ली में रोक लेंगे। 2022 में योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने इतनी बढ़िया पिच बनाई थी अखिलेश यादव के लिए किसान आंदोलन के जरिए, लेकिन अखिलेश यादव बैटिंग ही नहीं कर पाए। तो अब की बार जो 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 माननीय योगेंद्र यादव जी हैं, ना तो वो किसी यात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, ना किसी कैंपेन में दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अंग्रेजी में उनके आर्टिकल जरूर कुछ ना कुछ आते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो यूपी में और ये जितनी भी खबरें आप देख रहे हैं कि राजपूत नाराज है और ये नाराज है, वो मैं आपको छोटी बात बता दूं। आज से 2 साल पहले नोएडा में एक सोसाइटी में एक झगड़ा हो गया था, उसमें त्यागी लोकल एक टफ आदमी था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, सारे त्यागी नाराज हो गए, वहां महापंचायत हुई, उसके कुछ महीने बाद खतौली विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर में, वहां पे उपचुनाव हुआ, त्यागियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और वहां पे जो है आरएलडी कैंडिडेट जीत गया मदन भैया। तो उसको दैट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ टेम्पलेट कि पहले त्यागी नाराज था, अब की बार ठाकुर नाराज है। तो ऐसी नाराजगी जो होती है, ऐसे इस तरह के विरोधाभास हर चुनाव के पहले हर दल के सामने कुछ ना कुछ आते हैं, बीजेपी में भी आएंगे। अब ये लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडरशिप की एक्विपमेंट है, ये उसकी कुशलता है कि वो इन विरोधाभासों को कितनी जल्दी कितनी कुशलता से सुलझा लेती है। अब कानपुर में एक रमेश अवस्थी को टिकट दे दिया गया, वो किसी टीवी चैनल का डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्टर था या स्ट्रिंगर था। अब उसकी जो क्लेम टू फेम क्या है कि साहब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में है, बीजेपी के लोग हैरत में, ये कौन रमेश अवस्थी है भाई, लेकिन टिकट मिल गया उसको। तो ये सब चीजें चल रही है और जिस तरीके से योगी जी ने परिश्रम किया है और एक नेता है बहुत बड़ी जो टीवी चैनलों में गाली देने के लिए मशहूर है, जो 5% वोट पाती है, उन्होंने जो है योगी जी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है और उसी
योगी जी के समर्थन में, योगी जी के खिलाफ नहीं है,
नहीं अरे मतलब उसी पार्टी के नेता योगी जी के संन्यास पूर्व का नाम भी लेते हैं जो योगी जी का नाम है, और वो लोग हमेशा योगी जी को एक जाति विशेष का नेता बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब वो 7 साल हो गए हैं और उनको अब वो सब चीजें बहुत ऊपर उठ गए हैं,
अब तो उनको सहानुभूति है, वो कह रहे बताइए हमारे क्षत्रिय नेता को हटाया जा रहा है।
नहीं ऐसी ये केवल जो है इलेक्शन के पहले का अभियान है, केवल इट इज ए मोस्टली ये obnoxious disinformation campaign है योगी जी को हटाने की बात। ये केवल जिस आदमी को यूपी की राजनीति की बेसिक समझ नहीं है वही ऐसी बात कह सकता है। आज की तारीख में पूरे भारत में बीजेपी के पास दो ही कैंपेनर है, नंबर एक पे नरेंद्र मोदी, नंबर दो पे योगी जी, तीसरा कोई बहुत सारे हो सकते हैं। इन फर्स्ट टू में मेरे विचार से कोई विवाद नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें मिनिमम 70 आएंगी और एलाइज को भी मिलेंगी, और आरएलडी के बीजेपी के साथ आने से जो सेकुलर समुदाय के का जो है उसके हृदय को बहुत गहरा आघात लगा है, वो बहुत दुखी है कि यार जो है और इनका केवल एक ही काम है कि कैसे सबवर्ट करो, डिस्टेबलाइज करो, समाज में डिस्टर्बेंस पैदा करो और वायलेंस हो और दंगा हो और बवाल हो। तो जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आ जाने से पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी किस्म की सोशल पॉलिटिकल डिसऑर्डर क्रिएट करने की संभावनाओं पर बहुत ही मजबूत विराम लग गया है, ये सबसे बड़ी परेशानी है। और जो गुर्जर नेता हैं वो भी अब बहुत, हालांकि गाजियाबाद और नोएडा में गुर्जरों और राजपूतों को लेकर के भी मिहिर भोज को की मूर्ति को लेकर के विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया था और ये चर्चा थी कि इसके पीछे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कि एक कह रहा कि मिहिर भोज राजपूत थे, एक कह रहा गुर्जर थे, हालांकि वो भी मामला आगे ज्यादा चला नहीं, मामला शांत हो गया। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा जो लगातार आपके चैनल में बहुत लोगों ने कहा है, भारत के चुनाव को किसी तरीके से डिस्टर्ब करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। कल बंबई में जो सलमान खान के घर के बाहर जो गोली चली है, इट्स ए वेरी ओमनियस सिग्नल, ये बहुत ही गंभीर घटना है। ये छोटी सी घटना हमको लगती है लेकिन लोगों को शाम तक समझ में आया कि ये सलमान खान का पॉलिसी स्टंट नहीं है, जब मुख्यमंत्री ने स्वयं जाकर के मौके का मुआयना किया। तो यूपी में भी खुराफात करने वालों की कमी नहीं है, रामनवमी का उत्सव परसों आ रहा है और बिहार बंगाल में पहले ही मुद्दा बन चुका है ये, और बीजेपी ने ये इन नेताओं जो सेकुलर नेताओं को डिफेंसिव करने की कोशिश की है, यूपी में भी प्रयास हो सकता है। हाँ और एक बात और, यूपी में जो दो बड़े माफिया थे अब की बार वो सीन से बाहर है, अतीक अहमद और दूसरे मुख्तार अंसारी साहब, आला हजरत मुख्तार अंसारी साहब, और तीसरे जो
जहन्नम नशीन हो चुके हैं,
और तीसरे जो व्हाइट कॉलर माफिया है आजम खान साहब, वो सपरिवार जेल में है, पत्नी भी जेल में है और बेटा भी जेल में है। तो आजम खान के ये इन लोगों के सीन से बाहर होने के कारण लोगों को सांस लेने का मौका मिला है और अब जो है रामपुर में केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमानों का भी एक बड़ा वर्ग राहत की सांस ले रहा है कि साहब अब ये हिटलर नहीं है, हम लोग कम से कम चैन से वोट दे सकते हैं। और जो समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो भी आजम खान के खिलाफ बोल रहा है और आजम साहब ने अपना सपोर्ट बीएसपी एनडीए को दिया है। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए 2019 में तो ये 5 सीटें पा गए थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें पा गए थे और 19, 22 और 24 के चुनाव परिणामों में समाजवादी पार्टी के लिए कोई समानता नहीं होने वाली है। ये फिर से 5 सीट अगर पा जाए तो बहुत है। हाँ, एक दो नए सितारे उभर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहन जी का भतीजा आकाश आनंद, वो लगातार कैंपेन कर रहा है और अब तो टीवी चैनलों में उसके इंटरव्यू आना शुरू हो गए हैं। और दूसरे शिवपाल जी जो है बहुत मेहनत के बाद बदायूं से अपने बेटे को टिकट दिलवाने में सफल हो गए हैं, वो आदित्य को तो, और जो वहां पे जो शेरवानी साहब जो जीप फैक्ट्री के मालिक थे, कभी एमपी रहे बदायूं से, शेरवानी साहब टिकट न मिलने से नाराज हो गए थे तो शिवपाल जी ने उनको भी मना लिया है और नॉमिनेशन फाइल करने के समय शेरवानी साहब मौजूद थे वहां पे उनके साथ। तो आदित्य यादव को टिकट मिल गया, अब देखते हैं। तो यादव परिवार का एक नया सितारा अब राजनीति में आ गया है, 2 दर्जन तो पहले से ही थे, एक और आ गया है। तो
चलिए आगे चलते हैं और अब हम ओवरऑल टैली जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं।
यूपी पे मुझे कुछ कहना है सर, मैंने सबको सुना लेकिन यूपी पे मुझे कुछ कहना है।
बोलिए।
64 सीटों में मुझे कुछ डाउट नहीं है लेकिन मैं कुछ सीटों के नाम ले रहा हूं सर। एनडीए को कहां कहां सच में जो डेटा है वो कह रहा है समस्या है। रायबरेली, पीलीभीत, आजमगढ़, संबल, प्रतापगढ़, जौनपुर, ठीक है आप बाद में बोल लीजिएगा सर। जौनपुर गारंटी हार रही है, रामपुर, नगीना, सहारनपुर, घोसी, मऊ कह सकते हैं, श्रावस्ती, बिजनौर, कैराना, गाजीपुर, मैनपुरी और अभी जिस बदायूं सीट के बारे में बात हो रही थी, बदायूं में भी राह आसान नहीं है। इसमें से 6 सीट आप बीजेपी की तरफ कर सकते हैं, 7 सीट, तो ओवरऑल 70 हो सकता है।
70 हो गई ना,
हमें मैं कह रहा हूं इन सीटों पे बहुत कड़ी टक्कर है लेकिन कुछ सीटें तो गारंटी बीजेपी नहीं जीतेगी। जौनपुर उसमें से एक है सर।
चुनाव में टक्कर कड़ी ही होती है।
जौनपुर में आप कैसे कह रहे हो, जौनपुर में तो अभी अभी बीएसपी ने अपना कैंडिडेट दिया, उसके बाद तो सिचुएशन क्लियर होगी।
समाजवादी पार्टी ने कुछ वहां को दे दिया है।
अच्छे हैं ना, लेकिन इस तरह से तो नहीं होता ना। बाबू सिंह कुशवाहा को आप उठा के लाए बुंदेलखंड से और यहाँ डाल दिया,
ऐसे तो नहीं। वो मूल निवासी बांदा का है,
वो अलग बात है सर। लेकिन अभी तक जो बात हो रही थी जौनपुर को लेकर के, वो देखेंगे। जौनपुर पे नाराजगी, जिस जो सेंटिमेंट है धनंजय सिंह वाला भी, वो दिख रहा है ग्राउंड पे। अब आप लोग को पता नहीं दिखा होगा पर हमारी टीम को वो साफ झलका है कि भाई वहां पे वो प्रॉब्लम है। और प्लस अब कुशवाहा को टिकट देना, पहली बार एक स्मार्ट मूव, पता नहीं अखिलेश यादव ने कैसे खेला है लेकिन वो एक स्मार्ट मूव गिना जा रहा है। देखते हैं बाकी चीजें जो है पंजाब में। तो
वो जो मान के चल रहे हैं ना कि वो मुसलमान उनकी जेब में बैठे हैं, वो बहन जी जो है उन्होंने और भी स्मार्ट खेला है इस बार। और बहन जी ने कई बहुत सारी जगहों पे समाजवादी को काउंटर किया है, कुछ जगह पे बीजेपी को भी कष्ट दिया है, लेकिन बहन जी ने जो है वो बहुत स्मार्टली खेला है मामला।
बहुत।
तो आइए अब हम ग्रैंड टोटल ले लेते हैं। अब समय हो गया है तो हम ग्रैंड टोटल पे चलेंगे। ये आपका है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल में बीजेपी 319 है, एनडीए 395, ना 370 क्रॉस हो रही है और ना 400 क्रॉस हो रही है। हाँ, खुशी की बात यह है कि कांग्रेस 39 पे है और इंडी 85 पे है। ये आज का निष्कर्ष है। आइए अब हम
कांग्रेस को कितना दिए हैं सर, 39 दिए ना, तो इस हिसाब से तो हम सर जीत गए सर।
पिछले आप लगा ही कहां थे, हम तो आप पहले कहे थे लगा लो,
हम तो बोल रहे थे 44 के नीचे जाएगी कांग्रेस, सर तो यही था,
हमने बोला था 40 के नीचे की लगा लो, तो हमने लगा ही नहीं। चलिए प्रश्न ले लेते हैं, बहुत सारे प्रश्न आए हुए और इनको सिलेक्टिवली ले लेते हैं।